facebook.com/voaurdu.
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया को अगली वबा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 1113 मरीज दम तोड़ गए हैं और 75,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। आलमी वबा से मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में भारत दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 5 अमवात और 300 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन मगरबी यूरोप का पहला मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,73,00,000 और हलाकतों की तादाद 8,93,000 है। स्पेन की वजारत सेहत के आदाद और शुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस 5,25,549 हैं और इस वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद भी 29,516 तक पहुँच गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद और शुमार के मुताबिक फ्रांस में अब तक 3,67,174 केसेस और 30,732 अमवात की निशानदेही की गई है, जबकि बरतानिया में केसेस की तादाद 3,52,451 और हलाकतों की तादाद 41,643 बताई जाती है। अफगान वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 26 नए केसेस की खबर दी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 38,520 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 की वजह से 1,418 अमवात हुई हैं, जबकि 30,750 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए हैं। इसके साथ नई दिल्ली में अफगान सफारतखाने ने बताया है कि एक तवील अरसे के बाद काबुल और दिल्ली के दरमियान परवाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने अफगानिस्तान में कोविड-19 वबा शुरू होने के बाद से काबुल के लिए परवाजों को मुअत्तल कर दिया था। भारत से पहले पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने भी काबुल के लिए अपनी परवाजों का सिलसिला बहाल कर दिया था। उधर चीन में सदर शी जिनपिंग ने मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए इकदाम को सराहा है। ग्रेट हॉल में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए शफाफ और जिम्मेदाराना अंदाज में बर वक्त इकदाम किए। उन्होंने इस सिलसिले में अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की तरफ से की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया, जिसमें चीन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने इस वायरस की शिद्दत को कम जाहिर किया और उसे चीन की सरहदों से आगे निकलने का मौका फराहम किया। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान बाहमी तआवुन और एतमाद गहरा होने की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने यह बात पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस बयान को सराहते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इकतसादी मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तजियाकारों का कहना है कि चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी मनसूबे के हजम की वजह से पाकिस्तान और चीन के इकतसादी ताल्लुकात में गैर मामूली वसत नजर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीका के साथ भी अपने ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार रखने का ख्वाहां है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले मोहम्मद में मार्बल की एक कान में तोदा गिरने से मरने वालों की तादाद 19 हो गई है, जबकि मलबे तले दरे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तहसील साफी में मार्बल की कान में तोदा गिरने का वाकया सोमवार की शाम को पेश आया था और उस वक्त से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस वाकये से चंद महीने कबल भी इस इलाके में मार्बल की कान गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए थे। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अगरचे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के हल पर गुज़श्ता हफ्ते इत्तेफाक राय तो कर लिया है, मगर अब दोनों जमातों की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए ज़्यादा वसाइल खर्च करने के दावों पर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब सूबाई हुकूमत का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए आइंदा 1 से 5 साल के दौरान 750 अरब रुपये के मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने वाजह किया है कि वो सूबाई हुकूमत के दावों के बरक्स 736 अरब रुपये 5 बड़े मनसूबों पर खर्च करेगी। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहला वार खोलने का ऐलान और उस पर रद्दमल। हम इस बारे में मुख्तलिफ माहरीन से बात करेंगे, उनके अगर कुछ तहफ़ात हैं वो मालूम करेंगे और इसके साथ ही ये भी कि हुकूमत के इस सिलसिले में आइंदे इकदाम क्या होंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
तो सामिन, जैसे कि आप में से बहुत सों को मालूम होगा कि पीर के रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में तमाम सूबों के तालीम के वज़रा का एक इजलास हुआ था, जिसके दौरान कोरोना वायरस के बायस तातुल के शिकार तदरीसी अमल की दोबारा बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। और इस इजलास में मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि मुल्क भर के तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाए। 15 सितंबर से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और नवीं और दसवीं जमात के तलबा और तालबात के लिए हाई स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद, यानी ये कि कोरोना वायरस के केसेस में कोई तेज़ी तो नहीं आती और क्या सूरत बनती है, 22 सितंबर से छठी से आठवीं जमात के तलबा और तालबात के लिए स्कूल खोले जाएंगे और फिर 30 सितंबर से नर्सरी से पाँचवीं जमात तक के तालिब इल्म स्कूल जा सकेंगे। तो हम सबकी तवक्को है और ख्वाहिश भी कि सूरत हाल अच्छी रहे और बच्चे स्कूलों में जा सकें। पाकिस्तान में वैसे भी बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल है कोरोना पर काबू पाने की, और आपको याद है कि आलमगीर वबा के बायस पाकिस्तान के इदारे दुनिया भर की तरह तकरीबन 6 माह से बंद हैं। फाकी वजीर शफकत महमूद ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क भर के तमाम स्कूलों को पाबंद किया जाएगा कि वह हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उनका ये भी कहना था कि मदारिस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेत तमाम तालीमी इदारों पर SOPs का इतलाक़ होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। तो सामीन, हम मदारिस की सूरत हाल पर एक अलहदा प्रोग्राम पेश करेंगे, लेकिन पहले एक झलक शफकत महमूद साहब की गुफ्तगू से।
बच्चों की सेहत को क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, 7 दिन हम देखेंगे, 7 दिन के बाद दोबारा जायजा लिया जाने के बाद 23 सितंबर को 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस जो है उनको भी इजाजत होगी और वो भी खुल जाएंगे।
तो सामीन, सबसे पहले आज की राउंड टेबल की शुरका से आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं सेहत के एक मुमताज माहिर डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, जो इंडस अस्पताल के फाउंडर और CEO हैं, और इस पूरी वबा के दौरान उनके अस्पताल ने बहुत अहम खिदमात अंजाम दी हैं, ख़ास तौर से उन मरीजों के लिए जो महंगे इलाज की इस्तेआत नहीं रखते, क्योंकि कराची का ये अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, यानी यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है। इनके अलावा इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नूर फातिमा, इस्लामाबाद के ही एक प्राइवेट स्कूल की सीनियर टीचर सबीन कंवल, बरतानवी शहर मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट कॉलेज में केमिस्ट्री की टीचर सना अनवर, सिंध में प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद तारिक शाह साहब हमारे साथ हैं। सामिन, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से, जो मुख्तलिफ शोबों में तिब के महारत रखते हैं जिनमें इन्फेक्शस डिजीज़ भी शामिल हैं। तो जैसे उनका फ़ोन मिलता है हम उनसे बात करते हैं। तो लीजिए आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का डॉक्टर अब्दुल बारी खान से, क्योंकि तमाम चीज़ों का इन्हिसार इसी बात पर है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हुई है। डॉक्टर बारी अभी एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सफ़र के बाद हमसे बात करने का। तो डॉक्टर बारी, थोड़ा सा अगर, क्योंकि इस वक्त आज गवर्नमेंट ने फैसला किया है और ऐलान किया है शफकत महमूद साहब ने कि जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं स्कूल समेत तो वो खोल दिए जाएँ, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए किस हद तक ये दानिशबंदी का फैसला है?
میرے خیال میں ٹھیک ہی تھا کیونکہ ہم تو اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ 7 تاریخ کو ہم ریویو کریں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے کافی پچھلے رات 1 مہینے سے ہی نمبرز کافی کنٹرول میں آ رہے تھے. ہمیں یہ بھی تھا 7 تک تھوڑا سا اس کا بھی امپیکٹ نظر آ جائے گا کہ محرم پہ جو عشورہ کے موقع پر کچھ ہوگا. تو ابھی بھی نمبرز ویسے ہی جو پازیٹیوٹی اب کوئی تقریباً 2% پہ آ گئی ہے اور جنرلی ہاسپٹلس کے اوپر جو لوڈ تھا پہلے تو وہ کافی مطلب ہاسپٹل خالی پڑے ہوئے ہیں. کووڈ کے یونٹس جو ہے نا کافی خالی ہیں مطلب الحمدللہ. تو لیکن یہ اسٹیگرنگ کر کے یہی ڈسکس ہوا تھا این سی او سی کی میٹنگ کے اندر بھی کہ ہم جو بھی کھولیں گے اس کو اسٹیگرنگ کر کے کریں گے اور ایس او پیز کو فالو کریں گے اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کہیں آ کر کہیں سے ملتا ہے تو ایک وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پھر وہ کر لیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا. کیا یہ تو ہو سکتا ہے نا آپ کے پاس کہ آپ دوبارہ اس کو فیصلے کو واپس لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کافی 5-6 مہینے ہو گئے.
تو ڈاکٹر صاحب 2% جو ہے پازیٹیوٹی کا کیا مطلب ہے؟
ابھی جیسے جنرلی جو 25,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے یا 24-25 کے درمیان ٹیسٹ پر ڈے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, کچھ جگہوں پہ کافی کم ہے. ایوریج 2% پازیٹیو آ رہے ہیں جو کہ اور سیویریٹی بھی نہیں ہے کیونکہ لوڈ اتنا نہیں ہے ہاسپٹلس کے اوپر. تو اس پہ آئی تھنک فیصلہ تو ٹھیک ہے کیونکہ مستقل تو بند نہیں کر سکتے. اور یہ اسٹیگر کر کے کہ جو ہائی ایجوکیشن کو کھولا ہے تاکہ وہ ایس او پیز پہ زیادہ چانسز ہے کہ عمل کر سکیں بنسبت کی جونیئر کلاسز یا پرائمری کلاسز کریں. بچوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی ہے اس چیز کی.
تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ کراچی میں جو صورتحال پیدا ہوئی بارش کے بعد, ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ بے گھر ہوئے. تو مجھے ماضی میں یاد ہے کہ ہمیشہ اسکول کھول دیے جاتے تھے لوگوں کے لیے, ان کو وہاں ٹھہرا دیا جاتا تھا, بلکہ انٹیریئر سن سے بہت سے لوگ آ کے اسکولوں میں ٹھہرتے تھے. تو کیا اب بھی ایسی صورتحال ہے یا اس دفعہ ایسا نہیں ہوا؟
نہیں, اس دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے میرے خیال میں کہ وہ ایسا اسکول پہ نہیں کیا گیا. آپ بات صحیح کر رہے ہیں, مجھے بھی ایک احساس ہوا تھا کہ پہلے اس طرح کیا جاتا تھا کہ اسکولس میں لوگوں کو عارضی کیمپ بنا دیے جاتے تھے. میرے خیال میں اب اس دفعہ دوسری جگہوں پر استعمال کیا ہوگا انہوں نے.
تو ڈاکٹر بھائی آپ ابھی جہاں سے اترے ہیں تو تھینک یو کہ آپ نے فون بھی اٹھا لیا میرا. تو یہ بتائیے اسی طرح کی کسی میٹنگ سے آپ آئے اسی بارے میں یا ویسے کسی اور ٹرپ پر تھے؟
نہیں, میں اپنا ہاسپٹل ہمارا جو لاہور میں انڈس ہاسپٹل جو بن رہا ہے اس کی ٹرسٹ کی میٹنگ تھی کہ اس کی اپ ڈیٹس اور اس کا آئندہ, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے چیزیں سلو ہی ہوئی تھی کنسٹرکشن کی. تو اب دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جائے.
ویسے عمومی طور پہ پورے پاکستان میں کیا صورتحال ہے, یعنی کون سے صوبے میں زیادہ اس وقت نظر آ رہے ہیں کیسز؟
جو دیکھا جائے تو کوئی اوور آل ہی کم ہوئے ہوئے ہیں. جیسے میں ابھی پچھلے ویکینڈ پہ میں اسلام آباد میں تھا, پھر وہیں سے میں پشاور گیا تھا, کل شام کو ہی واپس آیا تھا کراچی پر, آج صبح پھر مجھے لاہور آنا پڑا تھا. تو اوور آل اکراس پاکستان جو ہے نا کنٹرول نظر آتا ہے.
تو اگر چاروں صوبوں میں ایس او پیز پر عمل کا مقابلہ کیا جائے تو کس شہر میں آپ کو سب سے زیادہ ماسک نظر آئے؟
بڑا مشکل سوال ہے. انفارچونیٹلی جہاز میں نظر آتا ہے, جب آپ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کو پہنایا جاتا ہے,
اچھا
الگ چیز ہے. لیکن جنرلی ایس او پیز پہ اتنا زیادہ فالو نہیں ہو رہا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو کچھ دو چیزیں ہیں, ایک کے اوپر جس کو میں کہوں گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے ملک کے اوپر, کیونکہ ایز اے مناسب قوم تو پوری کوشش کی گئی تھی کہ
ہر ممکن خلاف ورزی کی جائے.
جی جی جی. لیکن یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی تھی جو این سی او سی کے لیول پہ پروونشل ٹاسک فورس کے لیول پہ بھی, وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی لوگوں نے مل کے کام کیا ہے اس کے اندر, جس میں جو لوکل ایڈمنسٹریشن, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سب مل کے پھر اس کے اوپر ڈیٹا کو انالائز کرنا, اس کے حساب سے ریسپونڈ کرنا, وہ چیز ایک خوشائن بات ہے بہت. کہ جب پہلا کیس آیا تھا فروری میں, 26 فروری کو رات کو آیا تھا کیس, اور صبح 27 کو جو ایمرجنسی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر جب جو کار گزاری کی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں, اس کو ہم نے فالو کیا ہے, پھر نمبر, تو مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ یہ ایک بڑا کام ہوا ہے. اور پھر میں نے سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ اس کو آپ, یہ 15-16 لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے, فارم کو پتا ہونا چاہیے ताकि लोगों के अंदर एक ये नहीं है कि हम कोई पब्लिसिटी करना चाहते हैं, आप असल में कौम को ये जरा एहसास हो कि कोई है जो देखने वाला है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना कौम के अंदर, तो वो चीज हुई है। तो अल्लाह करे कि आइंदा भी हम लोग इसी तरीके से बाकी चीजों से भी इसी तरह नबज़ाबता हो, ताकि जो जो चैलेंजेस हैं उससे हम करें। अल्लाह करे, दुआ है मेरी।
डॉक्टर साहब एक बात मेरे लिए थोड़ी सी क्या बल्कि बहुत हैरान कुन है। देखिए ज़मीनी हकायक जो हैं पाकिस्तान में और इंडिया में एक से हैं, बहुत फ़र्क नहीं है दोनों मुल्कों की। क्या वजह है कि अब इंडिया ब्राज़ील से भी आगे चला गया, इतने केसेस वहाँ पे हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
ये एक मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने यही सवाल किया था कि ज़मीनी हकायक एक है, मेरे ख्याल में मुझे जो अंदाज़ा होता है कि वो एक कंसेंट्रेटेड एफर्ट कम हुआ है वहां पर बनस्बत यहाँ के। दूसरा एक जो चीज समझ में आती है जो कि मतलब एक स्पेकुलेशन है अभी, उसके ऊपर किसी को डेफिनेटली कोई डेटा तो मेरे पास नहीं है। हम लोग जो है ना, हमारी कौम जो है ना मीट ईटर है, वहां पर जो है ना जो वेजिटेरियंस है, और वेजिटेरियंस जो है ना ये प्रोटीन मीट प्रोटीन होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो एक ये एक समझ में आ सकती है बात। लेकिन ये है कि डेफिनेटली इसके ऊपर कोई डेटा तो मेरे पास नहीं है कि जिसके ऊपर हम इसके ऊपर कह सकें कि कोई ठोस कोई सबूत हो, कोई वो हो जिसके ऊपर मैं कह सकूं।
प्रोटीन की कोई खास किस्म है जो इम्यूनिटी पैदा करती है या इन जनरल?
प्रोटीन इन जनरल। अच्छा। आपकी इम्यूनिटी के अंदर जो
डॉक्टर साहब मैं तो अच्छी खासा वेजिटेरियन बन चुकी थी, अब आपने ये कहा तो फिर गोश्त खाना शुरू कर दिया बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
समीन अब इसी मौजू पर बात करते हैं डॉक्टर नूर फातिमा से, जो कि इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन हैं बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और सियासियात के शोबे की, और आपसे पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। इनको अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यानी महकमा खारजा ने एक अवार्ड भी दिया था। तो खुश आमदीद प्रोग्राम में डॉक्टर नूर फातिमा, पहले तो ये बताइए अवार्ड जो मिला था आपको किस चीज़ का था?
देखिए ये मार्टिन लूथर किंग अवार्ड था और ये उनकी बर्थडे के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और उसमें कुछ कंपटीशन बेस्ड अवार्ड था जो इनका ये सिविल अवार्ड है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बेसिकली एप्लीकेशंस कुछ कॉल की थी प्रोफेसर से, दैट वाज फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद नहीं हुआ। और उसमें उन्होंने कुछ आपसे काम मांगा था, मेरा भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट सेक्टर में मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा भी ये कि इंटरफेथ के ऊपर मैंने कुछ एफर्ट्स की थी, और यूएस के अंदर पढ़ने के दौरान मैंने उसमें कुछ पब्लिकेशंस भी की थी, कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर पढ़े थे।
चलिए हम बात करते हैं, अब जो फैसला है कोविड 19 के हवाले से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोलने का, और बल्कि हायर एजुकेशन यानी हाई स्कूल्स को खोलने का भी, और आपकी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तादाद में तलबा और तालबात ज़ेर तालीम है, तो आप मुझे बताइए कि आपके कुछ तहफ़ुज़ात हैं इस फैसले के बारे में, या आप समझती हैं कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला दुरुस्त है?
देखिए जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, तो नेचुरली बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई अंडरस्टैंड के पेरेंट्स का बच्चों का बहुत बड़ा कंसर्न था, और दिस वाज टोटली आउट ऑफ प्लेस, एक ऐसी चीज आ गई थी जिसके लिए कोई भी मेंटली तैयार नहीं था, एंड दे आल्सो डोंट नो कि हाउ टू एंगेज देयर चिल्ड्रन एट होम। सो उसलिए उनको ये फील होता था कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर देखें तो इसके अवॉइड करने से जितनी बड़ी हम तकलीफ से बचे हैं, और जितना हम तेजी से पाकिस्तान में बहुत सारे मुल्कों में बड़े उनके सामने हमारा बड़ा एग्जाम्पलरी जो प्रोग्रेस रही है, और उसमें बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि हमने सोसाइटी का हिस्सा जो वर्ल्ड लेबर था जिनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, या जहाँ बहुत ज्यादा गैदरिंग जो है वो आपस में कनेक्शन में हो सकती थी, कीपिंग इन व्यू दिस इज पाकिस्तान, वी हैव मोर ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन, we have more children in school than many other countries. So ye sab jab hai to usko rakhte hue samne main samajhti hu ki mera khayal hai government ko kholna to zarur chahiye tha, lekin uske sath sath ye zarur dekhna chahiye ki ye workable hai ki nahi hai.
तो अब ये कैसे देखा जाएगा, मतलब ये वर्केबल तो तभी पता लगेगा ना
कि क्या किसके ऊपर थोड़ा वर्क होना चाहिए था. आई डोंट नो इफ इट हैज बीन ऑलरेडी डन और नॉट, लेकिन इस पे होना चाहिए था कि स्कूल की कैपेसिटी या यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी, कॉलेज की कैपेसिटी, उसके अंदर स्टूडेंट्स और उसके अंदर आपको पता है कि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वी हैव अ वेरी स्वेयर प्रॉब्लम जो है और क्रॉनिक भी हो गया आपके. हमारे पास वी डू नॉट हैव स्पेस एंड वी हैव 15,000 गर्ल्स ओनली ऑन फीमेल कैंपस, 15,000 बॉयज ऑन द मेल कैंपस.
फिर एक वक्त पे एक क्लास में कितने लोग होते हैं?
डिपेंड करता है बैचेस पे, अगर जूनियर बैचेस हैं तो इट गोज अराउंड 50-40 और अगर इससे बड़े बैचेस हैं तो वो एमए है या उससे आगे है तो कुछ कम हो जाएंगे, 30 तक हो जाता है. बट मोस्टली इट रेंज जो है ये जाती है 25-35 और देन फिर 50 तक. तो क्लासरूम के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि आपने ये SOPs का मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे बड़ी अब हो रही है, एक कंसर्न हूँ मैं कि SOPs कैसे फॉलो होंगे अगर. और वैसे ही जो टाइमिंग है यूनिवर्सिटी में बात करें, स्कूल का तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन यूनिवर्सिटी की टाइमिंग जो है वो वैसे भी 8:30 से लेकर 5:30 तक होते हैं. अल्टरनेटिवली हम लेते हैं ना क्लासेस, तो वो जब 5:30 तक आप ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं तो आप कैसे करेंगे कि आप वो बच्चे आज आए फिर कल ना आए या फिर उस दिन आए और नेक्स्ट डे ना आए. आई डोंट नो कि ये किस तरह से होगा. इसका बेस्ट वो मेरा ख्याल ये है कि अभी भी आपको पता है कि बड़ी ही मेहनत के साथ टीचर्स ने और यूनिवर्सिटीज के जो आप आईटी सिस्टम है इन्होंने LMS के ऊपर या जो आपका गूगल क्लास है इसके ऊपर डेवलप किया है.
अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं एक बात और मुझे बताइएगा कि एक क्लासरूम में यानी कितने बड़े क्लासरूम है, क्या उनमें सोशल डिस्टेंस रखना मुमकिन है?
मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल. समटाइम होता है कि जैसे कोई हॉल है या कोई बहुत बिग रूम है लेकिन एवरेज और एन एवरेज इतना बिल्कुल नहीं है उसमें. मैं खुद जब क्लास लेती हूँ आई नो क्लासरूम के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर आप बहुत मैनेज करके कर भी लेते हैं कि जी ठीक है एक क्लास को आप टाइम एंड अगेन बुला लेंगे और उनको दूर बिठा देंगे, आपको पता है कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस हैं हाइजीन की इन द यूनिवर्सिटी ऑलरेडी, यूनिवर्सिटियों में खासतौर पर.
अच्छा,
आप वॉशरूम का यूज है बच्चियों के लिए, जो उनकी टक शॉप्स हैं और उनका जो बाकी जो उनका रिफ्रेशमेंट का सिलसिला है, फिर कॉरिडोर्स के अंदर वहां आप कैसे कहेंगे क्योंकि बच्चे हैं बच्चियां हैं वो इकट्ठे बैठ रहे हैं बात कर रहे हैं. आई मीन क्लास में तो टीचर के लिए आसान परहैप्स हो जाएगा कि यू सिट हियर एंड हियर एंड हियर, लेकिन वहां उसके बाद क्या होगा, आप इतनी बच्चियों को किस तरह से कोई मेंटेन करेगा कि आपने जी करीब होकर नहीं बैठना आपने. फिर बसेस में क्या होगा
और फिर हॉस्टल में क्या होगा, क्या हॉस्टल है आपके कॉलेज
के? हॉस्टल में क्या होगा? नहीं, हॉस्टल में तो आपको पता है कि इतना बुरा हाल है कि वो तो एक एक रूम के अंदर देयर आर मेनी गर्ल्स. तो ये मेरा तो मैंने तो अपना ओपिनियन दिया भी था यूनिवर्सिटी में कि आप इसको कोशिश करें कि हाफ आप इसको अभी भी ऑनलाइन रहने दें ताकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, तो वो हाइजीन की भी सिचुएशन जो ओवर क्राउडेडनेस है और ये सब चीजें मेंटेन हो सकेंगी. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आपको पता है दे आर नॉट, दे डोंट हैव सच अ बिग ह्यूज बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट की तो पब्लिक सेक्टर की होती है, प्राइवेट सेक्टर की रेफरेंस से अगर आप देखें ना एज कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी होती है. बट फिर देन हमारे पास एनरोलमेंट भी तो मैंने आपको बताया
56,000
स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल.
मेरा ख्याल है उसकी इस्लामी यूनिवर्सिटी होने की वजह से क्योंकि दूर दूर से लोग पढ़ने आते होंगे.
दूर दूर से आते हैं, फिर उसकी जो वैल्यूज है ना उसको समझते हुए बच्चियों के पेरेंट्स जो हैं वो आजकल के हालात देखते हुए हॉस्टल में रखना वो कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कि जहाँ थोड़ी सी आपने सेपरेशन रखी हुई है मेल कैंपस और फीमेल कैंपस के दरमियान, तो वो उस वजह से भी हमारे पास बच्चियाँ बहुत ज्यादा है.
अच्छा, आपने अभी बात की कि मैंने राय भी दी थी, तो क्या इस बारे में कोई मतलब हुई मीटिंग, कोई डिस्कशंस हुए या नहीं हुए?
अभी होनी है, मैंने दी है बिल्कुल और उस पे, और मुझे इसलिए देनी पड़ी है कि मेरी जो यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आज भी जैसे मेरे पास आई हैं और वो चेयर के कमरे में आई हैं तो उनके साथ साथ दो दो बच्चे हैं. तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप बच्चे कहाँ क्या करें जब आपने डे केयर नहीं खोला, आपने नर्सरी या स्कूल कोई चीज नहीं खोली है, तो बच्चों को माएं कहाँ छोड़कर आएं? इनको मैंने उस वजह से भी दिया था, एडवाइस की थी कि आप जो है कोशिश करें कि इनको ऑनलाइन रहने दें, ताकि ऑनलाइन रहने से ये होगा कि बच्चियां जो हैं, खासतौर पे जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे पेरेंट्स देख भी सकेंगे, मदर देख भी सकेगी, और उसके साथ साथ वो पढ़ा भी सकेगी, दोनों चीजें होंगी। तो आई डोंट नो, अभी तो ये चूंकि 15 से एक्सपेक्ट करते रहे थे, लेकिन इतना था कि शायद गवर्नमेंट कह दे कि नहीं। तो फिर आज कल से मेरा ख्याल है दे विल सिट टुगेदर एंड थिंक के क्या कंप्लीट ओपन करना है या इसको हाफ वे लेके जाना है या कैसे करना है। लेकिन मेरी तो यही सजेशन होगी गवर्नमेंट को कि आप एटलीस्ट बीएस के बच्चे, विच मेक्स अ लॉट ऑफ जो है वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसको कम अज कम आप ऑनलाइन कर दें।
वैसे ऑनलाइन जो है तालीम जो दी जा रही है, जो एजुकेशन है इस वक्त, खासतौर पर हाई स्कूल्स के और कॉलेजों के हवाले से, आपको लगता है कि वो मुकाबला कर सकती है फेस टू फेस एजुकेशन का?
बहुत सारी सोशलाइजिंग है जो बच्चे करते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, और स्कूल में भी कॉलेजेस में, तो नेचुरली वो चीज तो इसमें से माइनस होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने हैं फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। ये फिर वो बच्चे होंगे जो ऑलरेडी स्कूल, यूनिवर्सिटी स्कूल में सोशलाइजिंग कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, आप न्यू जो सेमेस्टर कमिंग, न्यू एडमिशन्स है ना, उनको आप ना ऑनलाइन करें, उनको आप यूनिवर्सिटी आने दें, सो दैट दे शुड ना लर्न समथिंग, और हमें भी फेस टू फेस देख लें कि अच्छा जी, ये अगर टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ा रही है तो इसका ये है, ये फेस है, ये नाम है, ये इसका एरिया है ना, ये सब हो जाए। लेकिन बाकी जो बच्चे, जो फॉर इंस्टेंस जो कि फोर्थ सेमेस्टर से एट सेमेस्टर तक के बच्चे हैं, जिन्होंने चार सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी दे हैव स्पेंड देयर टाइम, दे कैन स्टे एट होम। बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, हम जस्ट एक्साइटमेंट में कि जी प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे, सब हो जाएगा, ये तो इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा हमें मैनेज भी करना होगा, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ ये कोरोना का जो कोविड है, इसका अभी भी है, और अभी भी बहुत सारे सीरियस केसेस भी इसके है। अभी भी आपको बताऊं कि जस्ट टू शेयर ऑन द लाइटर नोट, कि अभी पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं टू कीप देम एट होम ना, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हैंडल कैसे करें, और दे हैव टू गो ना फॉर देयर वर्क आल्सो, तो वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पेरेंट्स उधर चले जाते हैं, तो एक सिस्टम थोड़ा बैलेंस। छोटे बच्चों के लिए तो मैंने बहुत डिफिकल्टी, मुझे आज ही मैंने देखा कि कम अज कम 6 टॉडलर्स कहने चाहिए वो 2 years 3 years के कुड सी अराउंड टुडे, इसलिए कि वो माइंड क्या कर सकती है ना, रिस्क तो नहीं ले सकती है।
बिल्कुल, चलिए डॉक्टर नूर फातिमा, बहुत शुक्रिया। और ये तो बस एक ऑन गोइंग डिस्कशन है, और अभी हम इस पर और भी बात करेंगे, और भी जरा आपका भी यूनिवर्सिटी की सतह पर हो जाए मुजाकरात आप लोगों के, कि क्या तय होता है आखिर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
तो डॉक्टर नूर फातिमा ने तो बात की यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें बात करते हैं सबीन कंवल साहिबा से। सबीन कंवल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं जिसमें प्री स्कूल से ए लेवल तक तालीम है, यानी 12 ग्रेड तक, और या आप ये कह सकते हैं कि कॉलेज के 2 साल भी वहाँ पर पढ़ा दिए जाते हैं। तो मुझे बताइए कि जो हुकूमत का फैसला है कि जो हाई स्कूल्स हैं उनको खोलने का, तो उसमें आप लोगों के स्कूल भी शामिल हैं?
जी जी बिल्कुल, 15 से इन्होंने कहा खोलने, और अल्टरनेट डे का अभी है। हमारा जो पूरा स्कूल सिस्टम है वो तो प्री स्कूल से लेके सेकेंड ईयर तक, ए लेवल तक है।
फिर मुझे बताइए, बल्कि आप सबसे बेहतर हैं अब ये बताने में, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया है कि जो प्री स्कूल से लेकर मेरा ख्याल है 8th grade तक स्कूल जो है वो बाद में खुलेंगे।
जी जी।
तो लेकिन अभी ये जो हाई स्कूल खोलने का फैसला है, तो इसमें किस हद तक आपको लगता है कि काबिले अमल होगा?
आई थिंक सो, अब तो हर कोई यही कह रहा है कि ओपन होने चाहिए, क्योंकि उसमें है कि देखिए, आप शॉपिंग मॉल में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं तो इतना ज्यादा रश है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ खुल गए, तो सिर्फ एक स्कूल्स ही रह गए जो कि नहीं खुले हुए। बैंक्स तो आपको पता है थ्रू आउट इसमें खुले ही रहे, मीन्स जितना भी मसला रहा है बैंक्स ओपन ही रहे, कुछ ब्रांचेस क्लोज, तो सिर्फ स्कूल ही थे जो कि क्लोज थे। दूसरा ये है कि हाई स्कूल के बच्चों का काफी मतलब उससे ना ऑनलाइन क्लासेस का उतना फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में तो पेरेंट्स भी इसी पे एग्रीड हैं कि खोलने चाहिए।
और टीचर्स क्या कहते हैं?
टीचर्स तो मैं आपको बताऊं कि टीचर्स सबसे ज्यादा चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, क्योंकि हम ऑनलाइन पूरी एफर्ट दे रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी उस तरह से
کلاسز لینے کا کوئی وہ نہیں آ رہا, یعنی مطلب جیسے مزہ نہیں آ رہا بچوں کو, مجھے نہیں لگتا کہ اچھی طرح سے وہ ساری چیزیں ہم ان کو سمجھا پاتے ہیں آن لائن جیسے ہے. خاص طور پہ جو چیکنگ وغیرہ ہے چیزوں کی نا, وہ تھوڑے سا ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ٹیچرز تو سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ اب اسکول کھل ہی دیں, کیونکہ ہم تو اسی طرح 8 to 2 ہم ہوتے ہیں, آن لائن ہی ہوتے ہیں اور کلاسز اسی طرح سے ہو رہی ہیں, تو پھر اسکول میں ہوگا تو ہمیں تھوڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے.
تو اب ظاہر ہے آپ کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے, ان کی صورتحال بہتر ہے, جو فیسیں وہ بچوں سے لیتے ہیں اور جس کلاس کے بچے وہاں آتے ہیں, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اسکول کی بلڈنگ جو ہے متعمل ہے اس بات کی کہ سوشل ڈسٹینس بھی رکھا جائے, بچوں کی تعداد بھی کلاس میں اتنی رہے, ایس او پیز یعنی فالو ہو سکیں؟
اس میں ہمارا جو اسکول ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ اتنا زیادہ فالو نہیں ہو سکے گا. ایون آج بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہماری مطلب ٹیچرس کے لیے اسکول اوپن ہو گیا اس طرح سے کہ ویک میں ایک دن ہم نے جانا ہے. فار ایگزامپل ایک دن وہ میتھس ٹیچر کو بلا رہے ہیں, دوسرے دن انگلش کو, تیسرے دن دوسرے سبجیکٹس, یوں کر کے نا. تو تھوڑے سے ہم لوگ تھے تو ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے بچوں کے ساتھ تو یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ انہوں نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے انہوں نے. تو اب ہم اگر فار ایگزامپل 20 کلاسز ہیں اور ایک بچہ ایک کلاس سے واش روم میں گیا, تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سے جو باقی 19 میں سے کوئی باہر نہیں گیا ہوا, اور کیا واش روم کے قریب بچوں میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. مطلب یہ تو ہم ویسے کہہ رہے تھے, ادر وائز ہمارے جو اسکولس ہیں وہ کافی زیادہ اسٹرینتھ ہے کلاسز میں, مینس کہ اگر بچے 24 آتے ہیں تو پورے 24 ہی ہیں ہمارے, مطلب بھر جیسے سمجھ لیں کہ کلاس روم فیلڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی اور بچہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکے گی. لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جی مارکیٹس میں لوگ جب جا رہے ہیں تو بھی تو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, اور افیکٹ بہت کم ہوتا ہے بچوں پہ اس کا کرونا کا یا اس طرح سے بھی. مطلب یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکے گی مجھے لگتا ہے اسکول میں ہوتے ہوئے.
تو کتنے کلاس میں بچے, عام طور سے 25 بچے ہوتے ہیں
ہمارے اسکول میں, 22-24 اتنے ہوتے ہیں ایک کلاس میں.
تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کے, تو کیا آپ 12-12 بچوں کو ایک دن میں بلائیں گے؟
آئی تھنک سو, یہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی ہمیں نا اسکول میں سے کوئی میسج نہیں آیا. آج دیکھیں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, مے بی ایک اور دو یا دو دن میں نا ہمیں آ جائے گا میسج کہ آپ, پھر تو وہ پھر میں آپ کو بتا سکوں گی کہ وہ ایسے اگر 12th ہوں تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے. آلٹرنیٹ ڈے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی, آپ سے بات کر کے سمجھ میں آئی ہے کہ آلٹرنیٹ ڈے سے ان کا یہ مطلب ہے کہ 24 بچوں میں سے 12 ایک دن آئے, 12 دوسرے دن آئے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیلی آئیں. مینس کہ وہ اب مجھے سمجھ آئی ہے. ایون نہیں, مجھے لگتا ہے یو کے میں یہ فالو ہو رہا ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہم یہاں پہ بھی آلٹرنیٹ ڈے سے ان کا یہ مطلب تھا کہ آدھے بچے ایک دن آئیں گے اور آدھے دوسرے دن. تو پھر یہ ہو سکتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کلاس کی حد تک. ایک اور بھی ڈسکس ہو رہا تھا یہ کہ شاید یہ گیمز پیریڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز فار دا ٹائم بینگ جب تک ہے یہ کرونا کا خطرہ.
اور ماسک آپ کے خیال میں بچے تیار ہوں گے پہننے پہ؟
جیسے ہماری پوری سوسائٹی نے ماسک پہنے, ویسے اتنا یہ فالو نہیں ہو سکا یہاں پہ. ایک تو دیکھیے ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے, گرمی انتہائی میں آپ سوچیں کہ ماسک تھوڑی دیر کے لیے ہم مارکیٹ جاتے ہوئے تو پہن سکتے ہیں, لیکن وہ اسی دوران میں ایون گروسری شاپنگ میں ہی آتے ٹائم پہ دل کرتا ہے کہ نیچے ہی کر لیں آپ ماسک, بہت گرمی لگ رہی ہے. یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا. اور بچے آپ کو پتا ہے بچے تو اتنے وہ ہوتے بھی نہیں ہیں, مطلب اتنی کیئر بچے نہیں کر سکتے خود سے. وہ یہی ہوگا کہ ٹیچرس کی ڈیوٹی ہوگی کہ بچوں کو بھی دیکھیں ماسک لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے, اور پھر بچوں کو پرابلمس بھی ایسے ہی ہوں گے جو ہمارے پاس آئیں گے کہ جی ہمارے ماسک کا یہ تھریڈ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, اس کی لوپس ٹوٹ گئی ہے. تو مے بی اسکول والے کو اس کا ارینجمنٹ کریں, کیونکہ کرونا سے پہلے جب ہمارے اسکول میں نا سینیٹائزر اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں, مطلب ہم نے ہمارے اسکول کے جیسے انٹرنس پہ بھی لگے ہوئے تھے ڈسپینسرز ٹائپ, جس میں بچے کر لیتے تھے, سینیٹائز کرتے تھے اپنے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر یہی ہے کہ کسی کو یاد رہتا تھا, کسی کو نہیں رہتا تھا.
یہ تھی سبین کنول جو بات کر رہی تھیں اسکول کھولنے کے فیصلے کے بارے میں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
और अब बात करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, जो कि कई शोबों में महारत रखते हैं जिनमें इन्फेक्शियस डिजीजेस भी शामिल है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं।
जी जी फरमाइए जी, मैं
जी बताइए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे यही एक मुख्तसर सवाल पहले तो पूछना चाहूंगी कि जो फैसला किया है हुकूमत ने, जाहिर है इसके पीछे वजूहात हैं, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है उसको देखते हुए आपको ये किस हद तक मंतकी नजर आता है, काबिल जवाब?
जी हाँ बिल्कुल, होना चाहिए, खुल जाए प्रॉपर प्रिकॉशन।
ये सारे फैसले जो हैं उसमें कंसल्टेशन में आप लोग शामिल हैं उसकी?
जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने कंसल्टेशन की हम स्टेक होल्डर से और बिल्कुल ठीक किया है फैसला। स्कूल कॉलेजेस अगर सिनेमा हाउसेज और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं तो स्कूल ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल। मैं समझ रहा हूँ तालीम को खुलना जल्दी चाहिए।
तो सामिन ये थे डॉक्टर जावेद अकरम। जैसे कि आपने अंदाज़ा किया होगा इनके टेलीफोन का रिसेप्शन अब भी काफ़ी ख़राब था, तो हम इसमें सिर्फ वही हिस्सा आपको सुनवा रहे हैं जिसमें गुफ्तगु काबिल फहम है, और आइंदा किसी प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से तफसीली बातचीत आपको सुनवाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स की मजमूई सूरत हाल के बारे में हमें आगाह कर सकते हैं सैयद तारिक शाह साहब, जो कराची से मेरे साथ हैं और वो प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो तारिक साहब, आप पूरे पाकिस्तान की मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं या सिर्फ
स्कूल? हमारी एसोसिएशन है सिंध लेवल की। ऑल
तो आप मुझे बताइए, जो गवर्नमेंट ने अब ऐलान किया है फेजेस में हाई स्कूल का, उसके स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों का क्या रिएक्शन है उस पर?
सारे शोबे जात खुल गए, तो ये खुशाइन बात है कि अब एजुकेशन सेक्टर को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, और एजुकेशन सेक्टर बहुत अरसे से तवील अरसे से बंद रहा है, तो 9-10 को बिल्कुल फेज वाइज में खोलना चाहिए, जो 9-10 ग्रेड्स हैं, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में सेकेंडरी क्लासेस और थर्ड स्टेज में प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी क्लासेस। तो एक एक वीक के गैप से बिल्कुल हमारे लिए भी ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम SOPs को जो है ना सही तरह इम्प्लीमेंट करवा सकें और बच्चों को जो है वो एक सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकें।
अच्छा, मैं थोड़ा सा वजाहत चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो गली मोहल्लों में भी हैं, मतलब छोटे छोटे लोगों ने खोल रखे हैं, तो ये कौन से प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी मैनेजमेंट सिंध में आप करते हैं?
देखिए, हमारे पास हर कैटेगरी के जो है ना वो स्कूल मौजूद है हमारे पास, और इसमें हाई फीस भी हैं, लो फीस स्कूल्स भी हैं, तो हर तरह के जो एरियाज में जो स्कूल्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं।
अंदाजन कितनी तादाद क्या है उनकी?
हमारे पास अराउंड 4,000 स्कूल्स हैं।
और कराची में कितने स्कूल्स हैं उनमें से?
कराची में या सिंध प्रोविंस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे अराउंड 7,000 स्कूल्स हैं, जिसमें कुछ प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं जो कॉलेज लेवल पे आते हैं, और कुछ स्कूल्स जो हैं वो मेट्रिकुलेशन है, कुछ ओ लेवल्स हैं, ये सब मिला के अराउंड इतने बच्चे।
तो तारिक साहब, अब आप मुझे बताइए, मेरी अभी बात हो रही थी, इस्लामाबाद में थी वो भी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका ये कहना था कि जो सिचुएशन है खुद प्राइवेट स्कूलों में, कि वहाँ पे बावजूद इसके कि वो सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वो ये समझती थी कि शायद मुश्किल है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंस या इन तमाम चीज़ों पर अमल करवाया जा सके स्कूलों के साइज के लिहाज से। तो आप क्या कहते हैं?
देखिए, मुश्किल तो जब होता है जब पूरी स्ट्रेंथ एक साथ आ रही होती, लेकिन अभी जो SOPs बने हैं उसके अंदर स्कूल की जो स्ट्रेंथ है उसको हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स एक टाइम में कॉल, 15 स्टूडेंट जो है वो एक टाइम में कॉल किए जाएंगे और 15 नेक्स्ट डे कॉल किए जाएंगे, ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उससे हाफ स्ट्रेंथ तो वैसे ही कम हो जाएगी, और बाकी जो हाफ होगी वो टीचर्स की स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर जो है वो SOPs या सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए 100% तो SOPs फॉलो करवाना ये तो मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल है, जब इतने बड़े बड़े लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, लेकिन हाँ स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ टीचर की बात बच्चा ज्यादा सुनता है, माँ बाप को जाके ज्यादा बताता है कि टीचर ने मेरी ये कहा है तो मैं यही करूँगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो SOPs को फॉलो करवाएंगे।
तो वैसे क्या कंसर्न्स हैं आपके ज्यादातर इस मामले में, क्या मुश्किलात नजर आती हैं इम्प्लीमेंटेशन में?
देखिए, मुश्किलात तो इस तरह से हैं कि देखिए पेरेंट को भी अब थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो थोड़ी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी कि अगर बच्चे को कोई ना कोई फीवर नजर आ रहा है, कोई सिम्टम नजर आ रहा है उनको, तो वो उस बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि हमारे लिए भी जो है ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम बच्चों को लुक आफ्टर करें, तो ये पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कम से कम लुक आफ्टर करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मास्क अपने बच्चों को उनको कंपलसरी जो है ना पहना कर भेजना होगा, क्योंकि स्कूल जो है वो ये जरूर कहेगा कि मास्क पहनने, लेकिन अगर बच्चा घर से ही मास्क लेकर नहीं आएगा तो फिर एक इशू हमारे लिए भी क्रिएट होगा कि हमें मास्क फिर उनको देने पड़ेंगे। थर्ड चीज ये जो बच्चों को जो लंच है वो घर से बनाकर भेजा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ब्रेक टाइम है उसमें क्लासरूम के अंदर ही बच्चों को ब्रेक टाइम की जाएगी, असेंबलीज नहीं होंगी। चैलेंजेस तो बिल्कुल होंगे, लेकिन हाँ जब हमें स्कूल जब तालीम की अहमियत को देखते हुए हम स्कूल्स को खोल रहे हैं तो बच्चों की सेफ्टी भी करनी पड़ेगी। चैलेंजेस जरूर होंगे लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करते हुए मामला चलाने पड़ेंगे।
ये भी मैं जानना चाह रही थी कि अब ये जो फैसला हुआ है तो इसमें किस हद तक जो थे स्कूलों के और कॉलेजों के नुमाइंदे शामिल थे इस डिस्कशन में जो खोलने से मुतालिक था?
ये जो अभी आज जो मीटिंग हुई है ये इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी है उसके अंदर मीटिंग हुई थी। उसके अंदर तो प्राइवेट सेक्टर से कोई भी नहीं होता, लेकिन जो अपने अपने प्रोविंसेस हैं उसके अंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने स्टीयरिंग कमेटीज कॉल की थी, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया था और अपने अपने जो डिसीजन हैं उसके हिसाब से प्लान करके फिर मिनिस्टर्स ने वहाँ पे सबमिट करा।
अच्छा तारिक साहब, जाहिर है कि मुझे ये पता है कि जो स्कूल टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूलों के उनके और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के वर्जन में काफी फर्क है, उनकी थिंकिंग में भी, तो इस पे मुत्तफिक हैं किसी चीज पे आप दोनों?
इस वक्त जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इस बात से मुत्तफिक हैं कि 15 सितंबर से स्कूल खोल देने चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी जो एसओपीज जो बनाए गए वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर बनाए हैं, तो इस बात पर तो सब एक पेज पर है कि स्कूल खुल जाने चाहिए, क्योंकि तालीमी नुकसान अब काफी हो चुका है बच्चों का, और कोरोना केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए और काफी अरसे से जो है वो मेंटेन्ड है जो लो लेवल है, तो स्कूल खोलने में कोई कबाड़ नहीं।
तो जैसे मैं यहाँ अमेरिका में आपको बताऊं कि अभी फ्लोरिडा में यहाँ तो बाकी स्कूल तो लेबर डे के बाद यानी आज के बाद खुलने थे जो तारीख थी, लेकिन फ्लोरिडा में स्कूल खोले गए तो उन्होंने ये तरीका रखा है कि एक तो यही रखा है कि क्लासरूम जो है ऑल्टरनेट डेज पर बच्चे आए उसमें, दूसरा उन्होंने ये रखा है कि हर बच्चे का टेम्परेचर क्लास टीचर ले ले, क्योंकि ये बहुत वाजे वो है, तो ये कोई महंगी चीज नहीं है, तो क्या ये इस पे आप लोग गौर कर रहे हैं कि टेम्परेचर बच्चे का लिया जाए क्लासरूम में आने के बाद, बजाय इसके कि वालदैन पर ये जिम्मेदारी रखी जाए?
जी जी बिल्कुल, देखें ये तो एसओपीज में शामिल है और टेम्परेचर गन्स कहलाती हैं वो, जो फोरहेड से रीड कर लेती हैं, तो ये स्कूल्स ने तमाम स्कूल्स में खरीद ली हैं और परचेज कर ली अपने लिए, और ये उसी को रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा बच्चों का कि किस बच्चे का क्या टेम्परेचर कौन से दिन था, तो ये सब काम कम्प्लीट हो चुका है।
वैसे आप सेहत के माहिर तो नहीं है लेकिन जाहिर है कि इस वक्त आप सब इन्वॉल्व रहे, तो क्या पाकिस्तान में वैसे कोरोना की खास तौर पर सिंध के बारे में पूछूंगी सूरत हाल क्या है इस वक्त?
जो गवर्नमेंट जो कोर्ट कर रही है वो तो आप लोगों के सामने ही है, और लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज जो देख रहे हैं, पहले जिस हिसाब से डेथ्स हो रही थी, जिस हिसाब से हॉस्पिटल उस हिसाब से भरे हुए थे, तो अब वो सिचुएशन नहीं है, अब काफी हद तक जो है ना चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है। इसमें एक चीज ये कह सकते हैं कि WHO कि जो वो है रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं वो इफेक्ट नहीं होते, तो इवन द WHO इवन द यूनिसेफ वो सब जो है ना स्कूल्स ओपनिंग के फेवर में।
तो एक मुझे याद है कि झगड़ा ये भी था कि ये जो बच्चे जो 6 महीने स्कूल नहीं गए तो उनकी वो फीसें देंगे या नहीं, तो उसका क्या हल निकला?
जी देखिए, जो स्कूल्स की फी का मैटर था उस पे हमने 20% रिड्यूस कर दिया था फी स्ट्रक्चर को, कि जब तक स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे जब तक 20% फी रिड्यूस रहेगी, और क्योंकि पेरेंट्स को अकोमोडेट करना था क्योंकि वो भी लॉकडाउन में किसी न किसी मसाइल के शिकार थे, तो हमने यही तरीके का रखा कि 20% फी जितनी मैक्सिमम हम कर सकते थे रिड्यूस वो हमने 20% रिड्यूस।
तो अच्छा, अब आपका अगला फेज जो होगा वो छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू करने से मुतालिक होगा, तो उसके बारे में अभी से कोई प्लानिंग की जा रही है या बाद में की जाएगी?
अभी तो फिलहाल जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए करेंगे और SOPs को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये लर्निंग फेज है, तो हम भी बहुत सारी चीजें नई सीख रहे होंगे इसमें, आज से पहले कभी ये सिचुएशन नहीं आई थी, तो अब जब SOPs के साथ न्यू नॉर्मल के साथ जब हम स्कूल ओपन करेंगे तो बड़े बच्चों के साथ ज्यादा करने में हम कन्वीनियंट इसलिए भी हैं ताकि हम उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेंगे, और जो भी चीजें हम जो सीखेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो अच्छे प्लान तरीके से छोटे बच्चों के साथ फिर हम जब करेंगे तो और सेफ एनवायरमेंट।
बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू सो मच।
ताज़ा तरीन खबरें रेडियो प्रोग्राम्स ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
और समीन हमारी अगली मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से है। सना अनवर केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट कॉलेज में। और मैनचेस्टर के बारे में आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान से बहुत ही मुशाबे है क्योंकि एक जो डाइवर्सिटी हमें नज़र आती है, एक नस्ली तनावु हमें जो नज़र आता है पाकिस्तान में, वो मैनचेस्टर में भी मौजूद है। और उसके साथ साथ बाज़ इलाकों पर तो आपको पाकिस्तान का ही गुमान होता है क्योंकि इतनी तादाद में पाकिस्तानी हैं और उर्दू बोली जाती है और तमाम खाने पीने की जगहें, बुटीक्स, तमाम चीज़ें, ऐसे ही लगता है कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और इनसे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि जब इंग्लैंड में स्कूल खोले गए थे, जब फैसला किया गया था, तो एक लंबी बहस वहाँ पर भी थी कि स्कूल खोलने के क्या नतायज होंगे। तो सना आप मुझे बताइए, आप क्या पाकिस्तान में भी क्योंकि खोले जा रहे हैं स्कूल, तो आप लोगों का क्या रिजल्ट रहा जब स्कूल खोले गए, तो कैसा रहा तजर्बा?
अब जब स्कूल यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे कॉलेज है, लेकिन स्कूल्स का भी मुझे पता है कि कैसे उनका सिस्टम काम कर रहा है। बहुत ज्यादा सोच इसमें अंदर की थी, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ी थी स्कूल्स खोलने से पहले। अभी भी स्कूल्स बिल्कुल सारे नहीं खुले, इसका ये मतलब है कि आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और आधे बच्चे क्लास में होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी कोशिश से वो जारी है कॉलेजेस में। ये भी है कि मास्क भी बच्चे जो है पहनते हैं, टीचर्स भी कॉरिडोर्स में, बस क्लास में नहीं पहनते लेकिन कॉरिडोर्स और वैसे कॉलेज या स्कूल में पहने जाते हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि बच्चों की पढ़ाई अब कंटिन्यू हो रही है सही से, कि कॉलेज में इंटरेक्शन है, स्कूल्स में इंटरेक्शन है टीचर के साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंस के मुताबिक से।
अच्छा, तो सना आप कौन से कॉलेज में पढ़ाती हैं?
ये कॉलेज एक स्टॉकपोर्ट में है मैनचेस्टर के।
खासतौर पर मैनचेस्टर में इसलिए बात करना चाहती थी कि मैंने देखा हुआ है और मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर हम लंदन के मुकाबले मैनचेस्टर को देखें तो हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा नज़र आती है, क्लास जो है क्लासेस में जो फ़र्क है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है, यानी वो पाकिस्तान से मुझे ज़्यादा करीब नज़र आता है मैनचेस्टर।
हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग होते मैनचेस्टर में। आप कॉलेजेस में देखो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हैं, ज्यादातर डाइवर्सिटी के रेंज में ये ज्यादा आते हैं।
जी हाँ, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, एशियाई बाशिंदे बहुत हैं और अफ्रीकन बहुत हैं।
जी, लेकिन मैनचेस्टर में ज्यादातर पाकिस्तानी ज्यादा हैं उस इलाके भी तकरीबन, लेकिन मैनचेस्टर अगर पूरा ग्रेटर मैनचेस्टर देखे ना तो फिर जो है ना एशियन तदाई बहुत ज्यादा है, साउथ एशियन।
तो अब आप अपने कॉलेज के बारे में मुझे बताइए।
एक क्लासरूम में अगर आप देखें, अगर कोई 21 स्टूडेंट्स होते, 21 स्टूडेंट्स, और समय लोगों के ज्यादातर हाफ जो है ना वो पॉपुलेशन एशियाई है, पाकिस्तानी बच्चों की। सो ज्यादा काफी डाइवर्स है इस के निस्बत से।
तो आप लोगों ने क्या देखा वहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे ही होते हैं जो कॉलेज में भी आते हैं अभी नए, तो वो लोग पाबंदी करते हैं SOPs की खुद ही, या आप लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ता है?
हमें इतना डिसिप्लिन नहीं करने पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है इसलिए क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत मच्योर है, क्योंकि जिन्होंने अच्छा किया हुआ है GCSEs में वो ही ज्यादातर आगे कंटिन्यू करते हैं ए लेवल्स की स्टडीज में, तो इसलिए काफी मच्योर होते हैं। कई बार जाहिर इसकी तो ऐसी बात है कि ये तो हम एडल्ट्स भी भूल जाते हैं अब, तो हमें भी एक दोनों को याद करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन डिसिप्लिन ऐसे इतनी स्ट्रगल नहीं है क्योंकि कॉलेजेस की एनवायरनमेंट है।
अच्छा, तो फिर इसके बाद कोई, मेरे ख्याल है कॉलेज जो थे अगस्त के शुरू में खुले थे स्कूल और कॉलेज, तो कोई सर्वे हुआ कि केसेस के बारे में कि क्या इजाफा हुआ या सेम रहे या कोई रेशो क्या है?
अभी इतना सर्वे नहीं हुआ क्योंकि बच्चे अभी स्लोली जा रहे हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना की ऐसी बात है कि 2 हफ्ते 14 डेज लगते हैं आपको सिम्टम्स आने से 2 to 14 days. सो अब जब 3 weeks बाद जो को सर्वे या रिजल्ट्स होंगे ना तो फिर जाके पता चलेगा, क्योंकि बच्चे हमारे कॉलेज में पिछली वीक में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए थे, थोड़ी थोड़ी तादाद में. इस हफ्ते ज्यादातर आ रहे हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं लेसन्स और क्लासेस में. तो फिर अगर हम 2 weeks बाद रिजल्ट्स देखें तो फिर हमें पता चलेगा. लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस में, मेरे फ्रेंड्स डिफरेंट कॉलेजेस में, और उनके की तो केसेस भी अभी आ रहे हैं. फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स के वो बच्चे और जो उनसे कोई कांटेक्ट में था वो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और आइसोलेट करें खुद को.
तो क्या क्लासरूम का साइज क्या है आपके यहाँ?
क्लासरूम का साइज 21 है, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं कि उस क्लास में आधे बच्चे एक हफ्ते में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर से स्ट्रीमिंग ऑनलाइन हो रही है, वीडियो हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे हमको देख रहे हैं. 10 बच्चे अगर 20 students हैं, 10 class में उस क्लास में, और 10 जो है वो अपने घर में ऑनलाइन उसी वक्त लाइव पढ़ रहे हैं.
अच्छा, कितने ही अच्छा आइडिया, यानी क्लासरूम में वो वीडियो है कि जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं.
बिल्कुल हाँ, माइक्रोफोन टच्ड है, वीडियोस है लगी हुई, हम जो है लाइव कर रहे हैं. जो बच्चे घर में है 10 और जो दूसरे 10 है वो क्लास में. फिर अगले हफ्ते स्विच होगा, जो क्लास में थे वो अब घर में पढ़ेंगे और जो घर में थे वो क्लास में आएंगे. ऐसे एवरी वीक स्विच होता रहेगा.
तो सना, ये जो अटैच किया हुआ है माइक्रोफोन से और वीडियो को आपने, तो ये टेलीविजन पे वो लोग देख सकते हैं या वो अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं?
वो हम कहते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप पे. समझ, हम जो है ना गूगल मीट यूज कर रहे हैं इसके निस्बत से, गूगल क्लासरूम ऐसी फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं.
मैं इसलिए पूछ रही थी कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में तो हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है.
हाँ,
तो वो क्या करेंगे?
फिर पाकिस्तान में ऐसे मुश्किल हो सकता है. फिर अगर, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे होता है कि क्लासेस में स्पेस ज्यादा होती है, बिग क्लासरूम्स होती हैं कुछ जगहों में. अगर ऐसा है तो फिर क्लासरूम में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेयर्स और टेबल सेपरेट हो सकते हैं 1 meter के दौरान तो फिर अच्छी बात है. क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि 21 students डिस्टेंस मेंटेन कर सके. एक ऐसे भी बात है कि अब तो मुझे लगता है गर्मी भी शुरू होती है अभी, कि ऐसा भी है कि मैदान में भी पढ़ा सकते. पहले तो जब हम छोटे थे और जब हम पाकिस्तान में होते थे तो की तो अगर मौसम अच्छा हो तो बाहर ही पढ़ा लेते थे.
कितने साल तक आपने पाकिस्तान में पढ़ा सना?
मैं 8 साल की थी जब यहाँ पे आई थी.
कहाँ से?
तो भिम्बर एक स्कूल है.
अच्छा, कश्मीर में.
जी.
तो बल्कि मैं हमेशा हर एक से ये सवाल पूछती हूँ. मेरा एक ख्याल है कि जो कश्मीर के रहने वाले हैं, चाहे वो इंडिया के कंट्रोल में हो कश्मीर या पाकिस्तान के, वहाँ पढ़ाई का बहुत शौक है, तकरीबन 100% एजुकेशन का रेट है. तो किस तरह आप लोगों में ये शौक पैदा हुआ वहाँ?
मुझे तो ऐसे लगता है हमारे दादा जान को पढ़ाई का बहुत शौक होता था, तो वो हमें बहुत ही डांटते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई की निस्बत से. और ऐसे हमारे बड़े लोगों में बहुत बहुत ज्यादा शौक था पढ़ने का, और क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी तो फिर वो जो है बहुत ही उनका दिल करता था कि हमारे बच्चे पढ़े. फिर जो है अपने बच्चों में इंस्टिल करते थे ये पढ़ाई. मुझे लगता है ऐसी बात है.
दुरुस्त, कोई ना कोई बात जरूर है. ये बड़े हाँ. कमाल की बात है वैसे जो भी है. अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि कितने एक्साइटेड है आपके स्टूडेंट्स क्लासरूम में वापस आकर?
बहुत ही खुश है. ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चे खुश हो रहे हैं स्कूल जाना और कॉलेजेस जाना. रोते थे पहले स्कूल्स और कॉलेजेस में आना, अब वो चाहते हैं कि हम जो है स्कूल में पढ़े और ऑनलाइन स्ट्रीम ना करें.
कैद में रहना है इतने दिन तक घरों में, जाहिर है बेचारे करें भी तो क्या करें.
करें भी क्या, फ्रेंड्स से बात नहीं कर सकते. यहाँ पे इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन है, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि बहुत क्वाइट भी होगी क्योंकि इतने अरसे अंदर रह के. तो फिर ये भी एक डिफरेंस बच्चों में आ रहा है, लेकिन ज्यादातर बहुत एक्साइटेड है वापस आना. अब पढ़ाई का ज्यादा शौक नजर आ रहा है बच्चों में.
अब पता कदर हुई है ना उनको कि क्या होगा अगर पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, घर में बंद हो जाएंगे.
हाँ बिल्कुल.
वैसे मुझे यकीन है कि आप जैसे खुश दिल टीचर होगी तो उन्हें दोबारा हंसना सिखा देगी वो.
आज मैंने अपनी नई क्लासेस में किया था लेसन بہت ہی اچھا مجھے بہت اچھا محسوس آج ہوا تھا کہ عرصہ ہو گیا تھا کہ ایسی فیلنگ کہ جو ایک ٹیچر بننے کا مجھے تھا وہ آئی تھی آج وہ بہت مس میں نے کی تھی
اچھا بہت شکریہ بہت مزہ آیا اب آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے پوچھتے رہیں گے
یہ وائس آف امریکہ ہے آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں پتہ ہے facebook.com/voaurdu
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں
تو یہ گفتگو تھی پاکستان میں 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان کے بارے میں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل تھے ڈاکٹر عبدالباری خان ڈاکٹر نور فاطمہ سبین کنول صاحبہ ثنا انور صاحبہ اور سید طارق حسین صاحب اور سامعین اب چلتے ہیں ایک مختلف موضوع کی طرف موضوع اس لحاظ سے تو مختلف نہیں ہے کہ ہم تعلیم کے بارے میں یونیورسٹی اور کالجوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات ہو رہی ہے دوبارہ سے کلاسز شروع کرنے کے بارے میں لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار شروع کی ہے یونیورسٹی میں لگائے جانے والے شمسی توانائی کے منصوبے کی پیداواری صلاحیت 1 میگاواٹ ہے جس سے اس یونیورسٹی کو سالانہ تقریباً 2.25 کروڑ روپے کی بچت ہوگی اس بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ سمن خان نے بھیجی ہے لاہور سے لیجیے سنتے ہیں
لاہور میں قائم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی بجلی کی ماہانہ ضرورت 3 میگاواٹ ہے ہر ماہ آنے والے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی ادارے کے لیے آسان نہیں اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یونیورسٹی نے متبادل توانائی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں لگایا جانے والا شمسی یونٹ 1 میگاواٹ بجلی پیدا کرے گا جس سے یونیورسٹی کو اندازاً 2.25 کروڑ روپے سالانہ کی بچت ہوگی
کو ظاہر ہے کہ وہ انرجی اویلیبل رکھنی پڑتی ہے ہمارے لیے اور جہاں بھی جنریٹ ہوئی ہے وہ ٹرانسمٹ ہو کے یہاں آئی ہے تو اس کے ٹرانسمیشن کے لاسز بھی بیچ میں شامل ہیں جو لاسز ہیں وہ ہمارے بل سے ہی ریکور ہوتے ہیں سم ہاؤ تو آپ کو پتہ ہے انرجی کی پرائس مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ گرین انرجی جو انیشیٹو ویسے بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھا سولوشن ہے
جامعہ نے کالا شاہ کاکو کیمپس میں 150 کلو واٹ پیدا کرنے والی شمسی دیوار بنائی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر 600 یونٹ پیدا کر کے نہ صرف کیمپس کے ایک بڑے حصے کو بجلی فراہم کرتی ہے بلکہ اس کا سایہ عمارت کو ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اسے قابل دید بھی بنا رہا ہے یو ای ٹی کے علاوہ صوبہ پنجاب کی 16 جامعات توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو اپنانے کے مشن میں شامل ہو چکی ہیں 2017 میں پنجاب اجالا پروگرام کے تحت اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا آغاز ہوا جو اب نیا پاکستان سولرائزیشن سکیم کے ذریعے جاری ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سالوں میں صوبے کے 15,000 پرائمری اسکولوں میں سے 7,500 کو شمسی توانائی فراہم کی جا رہی ہے
ہر مہینے 10 یونیورسٹیز کا ہمارا ٹارگٹ ہے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں آن گراؤنڈ ان کا کام شروع کروائیں 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا ٹوٹل کمپنیز آئی ہیں وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں کم قیمت پر دیتے بھی ہیں میرا انرجی ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جو اگر بجلی کے پیسے بچیں گے تو ظاہر ہے بچوں کی تعلیم پہ اس کے امپیکٹ بھی آئے گا اور ان کو فائدہ بھی ہوگا
ڈاکٹر اختر ملک کے مطابق 2015 سے بہاولپور میں قائم قائد اعظم سولر پارک کے ذریعے سالانہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے صوبائی وزارت بجلی و پانی مستقبل میں گھریلو شمسی توانائی پالیسی بنانے پر بھی غور کر رہی ہے
لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اس کو نیٹ میٹرنگ پہ جائیں تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو جب یہ کمپٹیشن آئے گا تو بجلی کے ریٹ ظاہر ہے الٹیمیٹلی نیچے آئیں گے اور اس کا فائدہ انڈسٹری کو بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا
یو ای ٹی میں قائم ٹیسٹنگ لیب مارکیٹ میں موجود سولر پینلز کا معیار جانچنے میں شہریوں اور کاروبار کرنے والے افراد کی مدد بھی کر رہی ہے
سولر پینلز پاکستان میں آ رہے تھے آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں 6 سال پہلے کہہ لیں تو ان کی کوالٹی کا کافی زیادہ ایشو تھا ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی تو لو کوالٹی انفارچونیٹلی پینلز پاکستان کی مارکیٹ میں آ گئے جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ اس سیکٹر کو کافی نقصان ہوا لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ کم ہو گیا انڈر آئی سی اسٹینڈرڈ وہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں جن جو کہ ان کی الیکٹریکل پرفارمنس ہے ان کی انڈیورنس ہے ان کی جو میکینیکل ان کی کیپیسٹی ہے کیپیبلٹی ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں
ماہرین کہتے ہیں کہ شمسی توانائی کو مزید سستا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سولر پینلز اور دیگر ضروری آلات درآمد کرنے کی بجائے مقامی طور پر تیار کیے جائیں ماہرین کے مطابق گرین انرجی پاکستان میں توانائی کے بحران میں کمی لا سکتی ہے. قومی گرڈ پر بوجھ کم ہونے سے حکومت کو مدد ملے گی اور اداروں کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر جیسے بجلی کے متبادل ذرائع کے اضافی اخراجات سے بھی چھٹکارا ملے گا. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
تو اس کے ساتھ ہی اب شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تمام والدین سے اس بار یہ درخواست ہے کہ خاص طور پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال رکھیں. جب وہ اسکول جائیں تو ان کو ماسک پہنا کر بھیجیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں, اور انہیں ایس او پیز کے بارے میں بار بار بتائیں جن کے لیے حکومت ہدایت جاری کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سب کو خدا حافظ.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.